हम लोग यहाँ पर इस उद्देश्य से आए हैं कि परिवार में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, समाज में रहते हुए हमारा जीवन आनंद से भर जाए और हर एक परिस्थिति में हम दुखी ना हों। भावें व्यापार में घाटा लग जाए या परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए या कुछ भी हो जाए, मिनट दो चार मिनट के लिए, घंटा के लिए तो हो, लेकिन फिर अपने जगह पर पहुंच जाए। हर एक परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आनंदित रहना, ये हमारा उद्देश्य है। और हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना तभी हो सकता है जब हमको अपने आत्मा का अनुभव हो, रियलाइजेशन ऑफ द सोल। ठीक है ना? आप हिंदी समझ लेते हो? आप, आपका नाम क्या है? हैं? पवनदीप। आप अंडरस्टैंड हिंदी? हैं? ओके, वेरी गुड। हमारा उद्देश्य है परम शांति। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, एक जैसा नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता, समझ गए ना? विचार करके देखा जाए ना, तो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हुए हैं, उनके जीवन में बाहरी तकलीफ हमारे से ज्यादा था, नहीं था? गुरु अर्जन देव जी महाराज के साथ क्या हुआ, मीरा के साथ क्या हुआ, और भक्त रविदास, भक्त कबीर या गुरु तेग बहादुर जी के साथ, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ, या और जितने महापुरुष हुए हैं, जीवन में कठिनाइयां उनको भी आई है, समझे ना? लेकिन हमारे और उनमें अंतर ये है कि वो अपने को ये समझते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, समझे ना? वो अपने को ये जानते थे कि मैं आत्मा हूं और कोई भी तकलीफ या कोई भी कष्ट या कोई भी हानि आत्मा को नहीं होती। सारे परिवर्तन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में है, ऐसा वो जानते थे। और जो उस इस रहस्य को जान ले, वो महान है, समझे कि नहीं? क्योंकि जो ज्ञान है या भक्ति है, एक नदी के समान है, जिसको प्यास है उसमें से पानी लेकर के पी ले। एक किसी की बपौती नहीं है कि मुझको ही ज्ञान होगा और को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सब के लिए एक समान है, लेकिन प्यास चाहिए, नदी गंगा जी बह तो रही है, लेकिन प्यास तो चाहिए ना। प्यास नहीं होगा तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। एक तो हमारे जीवन का उद्देश्य है परम शांति, परम आनंद, और हर एक परिस्थिति में खुश रहना, समझे ना। कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए शरीर, या कोई लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आनंदित रहें, ऑलवेज हैप्पी रहें, ऐसा हमारा जीवन हो जाए, उसके लिए ये ध्यान की क्लास है। उन्होंने प्रश्न किया था कि ओम शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, यही ना, कल बताया था ना। एक है आहत नाद, एक है अनाहत नाद, समझे कि नहीं। जो दो चीजों के टक्कर से जो पैदा होता है आवाज ना, उसको आहत नाद कहते हैं। कोई भी चीजों से पैदा हो, जैसे इस तरह किया, या कोई तबले का हुआ, या हारमोनियम का हो गया, दुनिया के जितने भी साउंड हैं वो दो चीज के टक्कर से पैदा होता है, उसको हम आहत नाद कहते हैं। एक नाद और भी है जो दो चीजों के टक्कर से पैदा नहीं होता, वो ऑलवेज हर एक के अंदर वो ध्वनि होते रहती है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद का भाव ये है, जब कोई सिख, जब कोई जिज्ञासु शांत होकर के बैठता है, और शांत बैठ करके गहरी श्वास लेता है, गहरी श्वास छोड़ता है, और आते जाते श्वासों को देखता है, तो ये अभ्यास लगभग 5-6 महीना करने के बाद सिर्फ शांत होकर के बैठने से उसको ये अनुभव होता है कि नाभि से एक ध्वनि निकल रही है, आवाज। वो दो चीजों के टक्कर से पैदा नहीं होता, वो जो यहां से आवाज निकलती है उसको अनाहत नाद कहते हैं। इस जगह को नाभि कहते हैं ना, और ध्वनि भी बोलते हैं हिंदी में। ध्वनि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से साउंड निकलता है, ध्वनि निकलता है। क्या पूछती है? ठंड लग रही है तो तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तुमको तो ठंड नहीं लगती, तुम आज गए, आज तो यहाँ बैठ जाए, यहाँ पीछे बैठ जाओ। इतने कपड़े पाए हो तो सीधे।
राहत जड़ा नाद है, कोई कोई आवाज।
हाँ, आवाज है वो, लेकिन जो अनाहत नाद नाम साउंड का है, समझ गए ना। नाद कहते ही हैं साउंड को, लेकिन जो दो चीजों के टक्कर से पैदा होता है वो आहत नाद है, आहत साउंड है। दुनिया में जितने भी साउंड हैं वो आहत नाद है, और एक ही नाद है जो अनाहत है, वो प्रत्येक व्यक्ति के नाभि से ऑलवेज निकलता है, लेकिन सुनाई किसी किसी को पड़ता है, समझ गए ना, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, झिम झिम वर्षे अमृत धारा, उसको अमृत धारा भी कहते हैं। समझ रहे हैं, वो सबके अंदर बरसता है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि सारे तो एक ही जगह से आए हैं और सबके अंदर सेम पॉसिबिलिटी है, समझे ना। वो गृहस्थी हो या साधु हो, चाहे जो मर्जी हो, सबके अंदर सेम चीज है। ना घाट है ना बाद है, ना घाट वाद होत है। जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो नाभि से एक ध्वनि पैदा होता है, उस ध्वनि को हम अनाहत नाद कहते हैं। और जो वो अनाहत नाद है वही ओम है। समझ गए कि नहीं? और वही एक ओंकार भी है। सच्चाई तो ये है कि ये जो सारा ब्रह्मांड, आज चलो ओम के ऊपर ही थोड़ा और विचार कर लेते हैं। ओंकार में जो है ना, अ उ म, तीन हो गया, और ऊपर अर्ध चंद्र बिंदी होती है, इस तरह करके ऊपर बिंदी होता है ओम में, होता है ना जी। तो चार चीजें हो गई, अ हो गया, उ हो गया, म हो गया और अर्ध चंद्र बिंदी हो गया। इसी तरह ओंकार एक तो सिर्फ इसलिए लगाया कि वो एक है, लेकिन ओंकार में भी चार होता है, एड़ा उड़ा मम्मा, और ऊपर जो है ना वो जो इस तरीके का होता है उसको अमात्रा बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे एक ओंकार लिखते हैं ना, तो इस तरह करके फिर ऊपर इस तरह करते हैं ना, जो ऊपर लाइन इस तरह खींचते हैं उसको अमात्रा कहते हैं। तो आपके अंदर तीन शरीर हैं, ये जो बाहर दिख रहा है ये स्थूल शरीर, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, और पीछे जो है वो ज्योत है। तो ये जो बाहर का शरीर है ना, स्थूल शरीर, ये समझ जाओ एड़ा है, और सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 19 है इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हो गया उड़ा, हो गया एड़ा, ये हो गया बाहर वाला खोल, और जो अंदर वाला है वो उड़ा हो गया। और जो कारण शरीर है जिसको हम अविद्या कहते हैं, पार्ट ऑफ माया जिसको मैं बताया हुआ है, कि जैसे एक दरख्त को पेड़ कहते हैं, दरख्त बोलते हैं, और हजारों दरख्त हों उसको जंगल बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो कारण शरीर जो है अविद्या माया, वो हो गया मम्मा, हो गया उड़ा एड़ा मम्मा, तीन चीजें हो गई, आ उ म हो गया। आ जो है सो ये बाहर का शरीर, उ हो गया सूक्ष्म शरीर, और म हो गया कारण शरीर। और जो ज्योत है अंदर, वो ऊपर इस तरह अमात्रा है ना, वो ज्योत है, जिसको आत्मा कह दो, परमात्मा की ज्योत कह दो, द एग्जिस्टेंस कह दो, जो कह दो, इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं सो ओंकार हैं। जब आप ओंकार की ध्वनि करें, जैसे देखो आप ऐसे बैठे हैं, ये अंदर से एक भाव करो, क्या तुसी नहीं कुछ बोलना, अब ये हमारा लड़का है तो हटा नहीं है समझे के, तो ये आप अपना ध्यान दो, ये पता नहीं मामा ने क्यों दिया ये सारे का एक ही प्रॉब्लम है समझे, ये अलग अलग बैठाना चाहिए, अलग अलग इतना अच्छा क्या तुमने पीछे बैठा वेरी गुड मैं क्या बोल रहा था,
है?
हाँ, जब हम ओंकार की ध्वनि करें तो जो फिजिकल बॉडी है और जो कारण सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सारे को ओंकार में डाल दो, समझ गए कि नहीं? आप जैसे हिंदू लोग हवन करते हैं ना, लकड़ी को लेके हवन करते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो आप अपने को ओंकार में डाल दो, द होल थिंग्स, सथूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, जो सब कुछ ओंकार में डाल दो। तो ओंकार में डाल दिया तो आप बचे नहीं, अब आप तो फिनिश हो गए, समझ गए कि नहीं? अब क्या बचा? ओंकार बचा, ओंकार बचा ना, और ओंकार परमात्मा है। ओंकार किसको बोलते हैं? वाहेगुरु को बोलते हैं ना। तो इसके मतलब जो है, जैसे एक बूंद को सागर में डाल दो ना तो सागर हो जाता है, तो जब आप ओंकार की ध्वनि करें तो अंदर से ये भावना करें कि आई एम सरेंडरिंग, मैंने सरेंडर कर दिया ओंकार में, और फिर धीरे से आंख खोल कर के देखें, ये सब कुछ ओंकार ही है, एवरीवेयर। ये नहीं सोचना कि मैं ओंकार हूँ और ये तो ऐसे ही है फिर काम नहीं बनना प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है जब हम कहते हैं ना कि तुम ज्योत, अपने को ज्योत समझो, सोचता मैं तो सुंदर हूँ, मैं ज्योत हूँ, मैं, अब दूसरा तो ऐसा ही है ए नहीं, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन हो, सारे ज्योत है, कोई भी कम नहीं है, थोड़ा भी कम नहीं है, हो नहीं सकता। एक एक विधि आज ओंकार को जाप करने के और बता रहा हूँ, वो भावना करना है इस तरह का, पहले स्लो बोलना है, फिर तेज करना है, फिर स्लो कर देना, समझे ना, ओंकार को ओम। एक और जब शुरू करना है तो भावना करना कि नाभि में हम हैं, ये जो ओम है ये नाभि में है, और नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, और कंठ से यहाँ, चार अक्षर होता है ना, अ उ म और अर्ध मात्रा, एड़ा उड़ा मम्मा और अमात्रा, ये अमात्रा है। ये जो आप लोगों को रहस्य जो बता रहा हूँ ना, मिस्ट्री, जिन लोगों ने 20-20 साल घर द्वार छोड़ के भटक रहे ना, ये उनको भी नहीं पता है, समझे ना? आपको ये सत्य बता रहा हूँ। चलो वो तो, आपको कुछ समय बाकी खुद ही पता चलोगा, मैं डायरेक्टली उसको ये नहीं करता। हमें साधना से मतलब, आपको साधना कराना है हमको, हम आपको बहुत लंबे रास्ते से नहीं ले जाना चाहते। छोटी सी आयु है और छोटी सी आयु में 80-90% तो खराब कर ही दिया है, समझे? चलो 10-5% बच रहा है तो उसको भी, उस पर भी आगे बढ़ेपा आने वाला है, समझे ना? जो रेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है एकदम सीधा मार्ग अपना करके हम पहुँच जाए वहाँ तक किसी तरह। आप इस तरह बैठे हैं, और ध्यान नाभि से शुरू कर दो, यहाँ से ना, यहाँ पर ना, पहले रखो ध्यान को, ये आँख खुला रखो। अभी अब मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं एक दिखा रहा हूँ, समझे ना? डेमोन्स्ट्रेशन, समझे कि ये आपने अभ्यास करना ये घर में, मतलब वो जो साउंड है ना वो किस तरह ऊपर जाता है और कहाँ जाके रेस्ट कर लेता है, आप आंख खोल करके देखो इसको। और आपका मन जो है यहाँ से कंसंट्रेट हो और यहाँ से उठता जाए, यहाँ पर स्लो हो ओंकार, यहाँ थोड़ा तेज हो जाए, यहाँ तेज हो जाए, फिर डाउन हो जाए, रेस्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि जो नाभि के अंदर एनर्जी है ना वो हृदय में पहुँचेगा। यहाँ जो एनर्जी है एक क्रूड बॉयल है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि इसमें मेनी थिंग्स है, वो यहाँ आकर के एक एग्रेसिव एनर्जी है, मतलब एकदम फ्लो करेगा। यहाँ पर उसको टर्न करना है प्रेम में, हृदय में, और प्रेम में वासना भी होता है, समझे ना? प्रेम अकेला तो होता ही नहीं है, पहले प्रेम जो है ना सो लिबड़ा होता है वासना के साथ। कंठ में जाके वो एकदम शुद्ध हो जाता है जब यहाँ पहुँचेगा ना, इसी को, इसको विशुद्ध बोलते हैं, प्योर, यहाँ जाके प्योर हो जाना है। और उसके बाद जो यहाँ प्योर हो गया है वो प्योर एनर्जी जब यहाँ पहुँचेगा तो ब्रह्म ज्ञान होगी, तीसरी आँख खुलेगी जिससे वाहेगुरु का दर्शन होगा। ये अभ्यास की जरूरत है, समझे ना? जो जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ इसको घंटा घंटा आप लोग एक घर में जो है ना, होना तो क्या चाहिए कि एक कमरा जरूर होना चाहिए घर में, और उस कमरे में कोई और चर्चा ना होवे, साधना करे और बाहर आ जाए, कोई भी बात करना तो बाहर आ जाए, समझे ना? और एकदम साफ सुथरा कमरा हो। लोग बड़े बड़े कमरे बना लेते हैं हर एक बातों के लिए, बहुत से घरों में जाते हैं ना तो काफ़ी बड़ा कमरा होता है और सारे भिस्की रखे रहते हैं, सारे शराब हर एक वैरायटी के, इतने बड़े कमरा हो। मैं कभी जहाँ पाठ वगैरह करता हूँ कहते वो तो है नहीं जी, वो तो कुर्सी पर बैठ के कर ले, पीने के लिए इतने बड़े कमरे होते हैं, जबकि वो तो कहीं भी पी सकते थे लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कमरा होता है। हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना इतना स्पॉयल हो चुका है, और कहते हैं शांति चाहिए, शांति कहाँ मिलना? लड़कों को देखो, यहाँ के घरों में जाते हैं ना लड़के जो न्यू जनरेशन से हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना माँ को पिता को कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, समझे ना। और भी मैं कहता हूँ जो आदमी माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करता वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, शांति हो ही नहीं सकता। क्योंकि माता जो है ना के चरणों में जन्नत कहते हैं, जन्नत वास करता है, समझे कि नहीं। और इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा है। ये हमारे देश में ये परंपरा थी कि सुबह उठ करके हम लोग ने माता को पिता को नमस्कार करना ऐसे करते थे, वो सारी परंपरा ही खराब हो गई, समझे। कोई संत महापुरुष जाए घर में, माता पिता कहते रहते हैं भाई महापुरुष आए नमस्कार कर, वो करता ही नहीं। तुमने इस धन को क्या करना है, इस गाड़ी को क्या करना है, उसको आग में फूंक दो। हमने जब हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया है, जीवन बर्बाद करके तुमको राख मिले तो क्या है, वो कुछ दो कौड़ी करने, उस राख को क्या करना। और जिसके लिए तुमने जोड़ा है ना वो इतना जल्दी फूंक देना है, क्योंकि ड्रग में पड़ जाने हैं, शराब में पड़ जाने हैं, और उसमें जाते टाइम लगता नहीं, फिर तुमको लगेगा कि मैंने सारी ज़िंदगी 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम किया, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, अपनी लाइफ को कुछ नहीं बनाया, अपनी ज़िंदगी को कभी शांति से नहीं, कभी सत्संग नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, और जिस जो इकट्ठा किया वो तुम्हारे सामने जब फूकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो कहते हैं ना कि ना दीन ही मिला ना दुनिया ही मिला, मतलब। और ये सच्चाई हर एक घरों में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ आँखों से, तो ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अभी भी जो है ना साधना करके अपने को जो है ना अपनी संपत्ति इकट्ठा करो, समझे। मैं आपको सुधारने के लिए, बच्चे आपे सुधर जाएंगे, हमको अपने को सुधारना। आपने घर में लेफ्ट हैंड डाउन राइट अप और ओंकार का जाप करना है, ये आप इस तरह देख लो। एक बार जो ओम बोलना है वो यहां से शुरू करना है ध्यान को, और उस ध्यान को यहां आवे तो म यहां पर आके अ उ म अर्धमात्रा जो अमात्रा है यहां आके रेस्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। द होल एनर्जी को क्रिएट करके प्योर करके हम इसमें डाल दें। हाँ जी बताओ। नॉर्मल रखना, एकदम टोटली रिलैक्स होकर के करना है, ठीक है। अच्छा, आज कल हम लोगों ने 7 चक्रों के ऊपर ध्यान करना था, समय के अभाव में नहीं कर सका, तो अभी कितना बज गया, 6:30 बज गया। हम लोग शुरू करते हैं। करना क्या है, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं तो